بہت بڑی خواہش ہے آخرت کے اعتبار سے, چاہے نیک آدمی ہے چاہے بہت بڑا متقی آدمی ہے یا بہت بڑا پرہیزگار ہے, چاہے کوئی بیچارہ گناہگار ہے, خواہش سب کے پاس ایک ہے. وہ خواہش یہ ہے کہ بھائی جو ایک حقیقی چیز ہے جو ہم دن رات دیکھتے ہیں, اور ہماری باری بھی ہے کیوں میں لگے ہم سب اللہ کے پاس جانے کے. اس سفر کا نام جو ہے, ہر سفر کے جیسے نام ہوتے ہیں, بھائی میں انڈیا جا رہا ہوں, پاکستان جا رہا ہوں, فلاں شہر میں جا رہا ہوں, فلاں کہاں جا رہے ہیں بھائی, شہر کا نام لیتا نا, فلاں شہر میں جا رہا ہوں, لاہور جا رہا ہوں, کراچی جا رہا ہوں, دہلی جا رہا ہوں, بمبئی جا رہا ہوں. اس سفر کا بھی نام اللہ پاک نے دیا ہے, خود اللہ نے بتایا اس سفر کا نام بھی ہے, اور وہ نام ہے موت. ہم موت کی ٹرین میں بیٹھے ہیں اس وقت, پہنچنا پہنچنا. جب کوئی مر جاتا ہے اس پہ تو ہم افسوس بھی کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, جنازہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ کبھی سوچا نہیں کہ بھائی میں نے بھی یہ جانا پہنچنا. تو اس سفر کی بھی ایک خواہش یہ ہے سب انسانوں میں کہ بھائی موت آئے تو ایسی موت آئے. دعائیں بہت مانگتے ہیں اس کی ہم, بہت ماشاء اللہ عبادت بھی کرتے ہیں لوگ, سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی موت آ جائے جسے اللہ پاک نے اپنی زبان میں بیان فرمایا, ارجی الى ربی کی رادی تم مردیا فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. یہ ہے مومن کی خواہش ہے نا, سب کی جو مر رہے اس کی بھی خواہش ہے. سبحان اللہ, کیا ہے کہ میرے مولا ارجی ربی کا, جب میں مر رہا ہوں یعنی جب میں اصل حال پر رب کے پاس جا رہا ہوں, سفر میرا ختم ہو گیا, منزل پہ جا رہا ہوں, ارجی ربی کی, ارجی ربی کی, اللہ کی طرف پہنچ رہا ہوں. تو فرمایا اس وقت جب تو میری طرف آ رہا ہو, موت تو آ رہی ہو, تو پھر ایسا کیسا ہونا چاہیے انسان کو, جو ہماری خواہش بھی یہی ہے, رادی تو مر دیا. سبحان اللہ, کہ جب میں جا رہا ہوں, موت کے فرشتے اتر رہے ہوں, لوگوں سے غائب ہو رہا ہوں, دنیا کی چیزیں آنکھوں سے جا رہی ہوں, ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں, نفس ڈاؤن ہو چکی ہو, لوگ رونا شروع کر دیں, سن کے کوئی پاگل ہو جائے, ٹیکس شروع ہو جائے, کرنا او اس کا انتقال ہو گیا, لوگوں کے منہ کھل رہے ہوں, اس کے بعد پھر کفن کی تیاری ہوں, قبر کی تیاری ہوئی, یہ اسٹوری ہے نا بھائیو, پیپر بن رہے ہوں, جناب جمل ہو, اعلان ہو رہا ہو, کالا بورڈ جو لگا ہو تو اس پہ نام بھی آ رہا ہو, تو اس وقت کیا ہو انسان کی پوزیشن, کیونکہ گھبرانے کی جگہ ہی اللہ کا جگہ گھبرانے کی تو بات نہیں. سفر میں پھر آپ بمبئی جا رہے ہیں, آپ اطلاع کرتے ہیں اپنے چاچا کو, ماما کو, میں آ رہا ہوں, تو خوش ہوں گے نا, تو ہم کہیں گے ارجی ماما, ماما کے پاس جا رہے ہیں, تو ماما آئے گا پھول کے حال لے کے آئے گا, بچے بھی آئیں گے, اور آپ کو جیسے جیسے ٹرین نزدیک جائے گی खुशी होगी कम होगा? खुशी होगी ना, मस्त हो रहा होगा, भैया बोल आएगा, अपना बच्चा आएगा, उसको प्यार करूंगा, उससे मिलूंगा, ऐसे देखूंगा। तो ये अल्लाह ताला कहता है जब तुम मेरे पास है तो तुझे खुशी होनी चाहिए, रोना चाहिए, हैं, खुशी होनी चाहिए ना, मौत से डरना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अपने रब के पास जा रहे हो, रब तो अल्लाह हो अकबर, कोई रिश्तेदार उसका मुकाबला कर सकता है अल्लाह की मोहब्बत का? और फिर चलो भी आपके रिश्तेदार बना लेंगे, खाना वाना बना देंगे, बिरयानी बना देंगे, चिकन बना देंगे, कबाब बना लेंगे, मेहमान आ रहे हैं, तो अल्लाह जब अपने मेहमानों के लिए क्या मेहमान ही बनाता होगा? फिर जी आखिर वो भी तो कहकर मेरे मेहमान आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा एक नक्शा दे रहा है कुरान के अंदर। अल्लाह अकबर, मैं फिर लगा खुश हुआ मेरा मेहमान है, अर्जी रबी के मेरे पास आ रहा है। लेकिन कैसा मेहमान होना चाहिए वो जिस हालत में पास है? तो वो बताया अल्लाह पान, अल्लाह जी तुम मर दिया कि पूछो तू मेरे पास है तो मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी हो। ये है हमारी मंजिल, जब इस हालत में जाएंगे तो कहते हैं बहुत खुली जन्नत, सुभानअल्लाह, आ जा खत्म, बस मामला तू आ गई मेरे पास, आ मैं तुझे खाने खिलाता हूँ, मैं तुझे रहाइश दिखाता हूँ, तेरी रहाइश कौन सी है, तेरे महल कौन से हैं, और वहाँ खड़े होंगे हमारे गुलाम, अल्लाह को लाइन बांधे हजारों के हिसाब से, तश्तरी पकड़े हुए सोने की सलूट पड़ रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हार पड़ रहे होंगे, वेलकम वेलकम वेलकम, मरहबा मरहबा जन्नत, ये तुम्हारा महल है, ये तुम्हारे, और वो जैसे जैसे आपकी सवारियाँ चल रही होंगी, सुभानअल्लाह, जो आपके महलात हैं उसमें से आपकी हुरें झांक के देख रही हैं कि मेरा खामिद कौन सा दुनिया से आ रहा है, जिसके लिए इतना इंतजार करती थी इतनी देर से। मज़ार ये हमारी स्टोरी है सर, ये असल स्टोरी है अल्लाह ताला हमारे लिए बता रहे हैं। हम तो बस अपने आप को ख़त्म किए हुए हैं, अपनी इज्जत ही नहीं हम रखी, कुछ भी इज्जत है ही नहीं हमारे, ईमान ईमान वाले कितनी ऊंची चीज है, आप देखें मर्द और औरत दस लगे, ये है इज्जत हमारी, सजी होगी जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, आप आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होंगे इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह। तो ये थी वो जगह यार, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ यार, हम तो बस काम बन गया हमारा, पता नहीं अब से उससे कोई पूछेगा यार 50 साल तक जो तुझे मुश्किल आई थी इस चीज को हासिल करने, पता अब भूल भाल जाएगा आदमी, गुस्सा ही खत्म, उसको याद ही नहीं रहेगा कभी कि मैं रातों को उठता था, ये मैंने मुजाहिदा किया था, ये मुश्किल आई थी, ख्याल भी नहीं होगा उसका, तसव्वुर भी नहीं होगा कि मैंने कुर्बानी दी थी, ये ख्वाब बन जाता है। बस ये आजमाइश आदमी की, देखो हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, कुरान से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं जो अल्लाह का मैसेज हमें आ रहा है ही नहीं, अल्लाह की डायरेक्ट हमें बता रहे हैं कि तुम पे एतबार कर लो, यकीन कर लो इस बात को कि तुमने आना भी है, आने के बाद ये सब कुछ हमारे साथ होने वाला है। तो असल चीज़ है कि जब आदमी इस हालत में अल्लाह के पास पहुँचेगा कि अल्लाह से राजी है, वो से राजी है, और जन्नत के दरवाजे खुल गए, हम सब की ख्वाहिश, ठीक है, अब सुन तो लिया हमने, खुश भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मस्त भी हो गए। कोई काम ऐसा है भाई कि सुनने से काम पूरा हो जाता हो? ईमान से होता है, ईमानदारी की बात कि आपको मैं कहूँ भाई बस ये तेरा मकान बना देंगे, तेरा ये महल होगा, ये तेरी दुकान होगी, ये तेरा फला होगा, भाई जी किधर है, कोई मिलेगा आपको बाहर निकल मिल जाएगा? खुद सोचे क्या क्या है कि आखिर ये सब कुछ करना है, इस हालत से हमने दुनिया में जाना है, जाना है, फिर सुन तो लिया, अमल तो करो, अमल करो कि तो यानी हिम्मत तो करो। कोई आज तक रिकॉर्ड ही ऐसा नहीं है कि एक आदमी बिस्तर पर लेटा है उसको स्टोरी सुनाई जाए आपको तेरा महल बनेगा, वो तेरी शादी होगी, वो तेरे बच्चे होंगे, तेरी बीवी होगी, कभी हुआ ऐसे आज तक सुनने के बाद स्टोरी मिल जाए? तो नाउज बिल्ला तो अल्लाह स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं। मुझे बताएं आप कितने आदमी जो हैं इस आयत को सुनने के बाद समझने के बाद इस शौक को पूरा करने का शौक रखते हैं? सब आपने सुना है, अब तो सुनने के बाद अब तो ये होना चाहिए कि यार तो बेकार है, अगर ये पोजीशन हमारी नहीं होगी, अब दो ही मौतें हैं, या तो ये हालत हमारी ना हो मर रहे हो तो वही अल्लाह ने बताइए, उस वक्त तुम्हारी आँख बंद होगी, फिर क्या होगा? अल्लाह तुम्हें आप कहते हुए मेरे जिस्म कांपते अल्लाह पाक होगा, जिस तरह जान निकाली जाएगी, जिस तरह मारा जाएगा, फरिश्ते चीख रहा होगा, पुकार कोई सुन ही नहीं रहा होगा, वो देख रहे आदमी सुन रहे हैं, बचाओ बचाओ बीवी बच्चे, कौन सुन रहा, कोई नहीं, लोग तो तैयारी कर रहे हैं उसको दफन करने की, पकड़ के उसको धक्के दे के झक जहन्नुम की आग में फेंका जाएगा। मुझे बताए, दो रास्ते हमारे सामने हैं, जिंदगी मौजूद है, चलो 70 साल के से 80 साल के लोग हों, 90 साल के हों, लेकिन अल्लाह का सुनत इलाही है कि जिस वक्त ये पैगाम पहुंच जाए और तुम तैयारी शुरू कर दो तो मैं तुम्हें कामयाब समझूंगा। देर नहीं है, अपने आप को लेट मत समझो। बस आज हमें पता चल रहा है इस बात का, अल्लाह ताला समझ गया बात कि हम तो बड़े फजूल हो जिंदगी की, अब तो मौत आ रही है हमें, तो ये इसमें तो ना कोई ऐसा अमल ही नहीं है कि हम तू हमसे राजी हो, हम तुझसे राजी हो, क्या चीज़ है हमारे पास, नथिंग एट ऑल। भाई जो नमाजें पढ़ते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं, ये रमज़ान रखते हैं, कि ये इस काबिल है, सोचने की बात, और ये मंजिल भी नहीं है। इसको पाने के लिए अल्लाह ताला खुद ही ऐलान फरमा रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह, मुश्किल में डाल रहे कि तुम तो सोच भी नहीं सकोगे इस मुकाम पे आदमी कैसे पहुंच सकता है। ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं, ताकि तुम वो अमल कर लो। आसान बात है, अब ये भी पता लग जाए भाई कि अमल भी अल्लाह बता रहे हैं कि अगर तुम ये अमल कर लोगे, तो अगर तुम ये अमल करते हो तो अल्लाह गारंटी दे रहा है कुरान में कि सब कुछ तुझे मैं अता कर दूंगा। पता है किस किस को ये अमल पता है, जिसे कोई नहीं पता अपने गर्दन में से हाथ डाल लें और अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह हमने क्या तैयारी की है। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की बात है, ये हाल है हमारा। मौत आने वाली है और पता ही नहीं किसी को यार इसकी तैयारी, इस अमल, इसका अमल कौन सा है। किसी स्टूडेंट को आप पता ही ना हो कि कल मेरा पेपर किस चीज का है, उसको कल पता ना हो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, किस चीज का मेरा कल पेपर है, और वो जाके बैठ जाए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, मुझे कितना बेवकूफ स्टूडेंट होगा। कहते उसे तुझे पता था, तू बैठा मुंह देख रहा सबके, कहते मुझे पता नहीं था आज मेरा पेपर किस चीज़ का, मुझे नहीं पता आज पेपर क्या है। वो जिसको पेपर ही नहीं पता वो तैयारी क्या करे, जिसको अमल ही नहीं पता वो इस तरह जाएगा कैसे। चलो आज ही सही, आज ही समझ आ जाए हमारे बात तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भाई बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम कि भाई चलो अल्लाह ने करम फरमा दिया, आज की शाम वाली बड़ी अच्छी शाम हो गई है, पहली मगरिब है जिसमें टाइम चेंज हुआ है, पहले तो शाम में होता था ना, तो इसका तोहफा मिल रहा है, और है भी माश रजब का तोहफा है, शाबान आने वाला है, रमज़ान मिलने वाला है, तो आज से तैयारी हो जाए करने में, इसी अमल पर तैयारी करनी, और पूरा रमज़ान भी इसीलिए दे रहे हैं अल्लाह ताला, याद रखना। नमाज के लिए नहीं दे रहे, नमाजें बहुत पढ़ते हैं, कुरान के लिए भी नहीं दे रहे, कुरान खोल के बैठ जाते हैं, बहुत कुरान पढ़ते हैं, उम्रों के लिए भी नहीं है, हज के लिए भी नहीं है, इस खास अमल के लिए जिससे अल्लाह ने वादा किया है, ज़ादत मर्दिया बहुत बड़ा मुकाम है ये, अल्लाह ने वो लोग दिखा दिए जिनको दुनिया में कह दिया मैं इनसे राजी हूं, वो लोगों की जिंदगी आप देखें। तो हमें तो यही कहा जाना कि मौत के वक्त में खुशखबरी मिलेगी, लेकिन क्या लोग होंगे जिन्हें जमीन पर बता दिए कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया, और कोई बेवकूफ आदमी पे क्रिटिसाइज करे, इन पे तनकीद करे, अस्तग़फिरुल्लाह, वो कितना बड़ा बंदर होगा मुझे बताया। सोच सकते हैं कि अल्लाह तो कह रहे हैं मैं इससे राजी हूं, अल्लाह फरमा रहे हैं, और वो कह जी इंसान बड़े जी तो कुछ भी नहीं थे, तो साहबा कराम तो फना साहबिया पे साहबों पे नुकते कर, यानी अक्ल से इंसान दी समझ जाए किस आदमी की क्या ईमान कैसे। तो उनका तो इतना ग्रेट मुकाम था कि सुभान अल्लाह कि अल्लाह ने कुरान जमीन पे चलते फिरते कह दिया था तुम से मैं राजी हूं, हट अबू बकर मैं राजी तेरे से, उमर मैं ताज से, जुबैर मैं तेरे से राजी, तलहा मैं तेरे से राजी, सुभान इसके बावजूद कि अल्लाह तू तो राजी हो गया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं क्या, हम फिर भी वो काम करें कि अल्हम्दुलिल्लाह तू हमसे राजी ही रह जाए दुनिया से। उनकी ये हालात थे। तो आज अमल है जो कुरान में बता रहा है, देखो मैं खुद नहीं कह रहा भाई, कुरानी आयत है, कुरानी बता देता हूँ क्या कहता है, या अय्यतु नफ्सुल मुतमईना, अल्लाह ने शायद नहीं बताया क्या पहली बात, कि ये मुकाम हासिल करने के लिए जो अल्लाह ने बताया अर्जी रबी का, जब मौत के लिए, मौत के वक्त इस मुकाम को हासिल करने के लिए मेरे पास ऐसे आने के लिए तुम्हें जो जिस चीज़ की कोशिश मेहनत करोगे उसमें अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें जब ये मुकाम मिलेगा वो क्या चीज़ है? अपने नफ्स को, अपने नफ्स को मुतमन्ना नफ्स बनाओ। हमें तो इसका पता ही कोई नहीं इसका पता कुछ पता नहीं, पौड़ में गुम हो गए हम, दुनिया में ऐसे मस्त हैं, पता नहीं मुतमन्ना क्या चीज़ है, पता है किसी को नहीं। गुजराती में बताओ, ये ऐसा लफ्ज़ ना गुजराती में, ना फारसी में, ना इंग्लिश में, किसी में नहीं आएगा। ये आएगा तो किसी में आएगा, जन्नत का लफ्ज़ तो अरबी में ही आएगा। इसी को रटना पड़ेगा हमें मेरे भाइयों। क्या है ये? नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से ये है सारा इतना बड़ा मुकाम जो जो जिनको जिनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर ये एजाज दिया था कि मैं तुमसे राजी हो गया, वो किस वजह दिया था? कि ये चीज उनके पास थी कि उनके नफ्स जो थे वो क्या थे? नफ्से मुतमइन्ना थे। बड़े सुभान अल्लाह, हर सहाबी का नहीं ये नफ्स था, उसने ये हासिल कर लिया था। नफ्स इंसान के अंदर ख्वाहिश जिसको कहते हैं डिजायर, यही है सारा मुसीबत, ये सबसे बड़ी मुसीबत, इस पे मेहनत करनी है। तीन नफ्स हैं इसकी, तीन कैटेगरीज हैं इसकी, इस नफ्स की कितनी कैटेगरीज हैं? तीन। एक कहते हैं लफ्ज लमाम, लफ्ज अम्मारा, ये कुरान के सारा। दूसरा होता है लफ्ज लवामा, और तीसरा क्या है? नफ्स मुतमइन्ना। सुभान अल्लाह, ये तीन हैं कैटेगरीज, तीन दर्जे हैं नफ्स के, इसको सुन लें। और इनसे आप और मैं अपना अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं, पता चल जाएगा आराम से। ये अल्लाह ने एक पैमाइश लगा दी, पता चल जाएगा कि हमारी नमाजों का क्या असर है, कुरान के क्या असर है, उम्रों का क्या असर है, हजों का क्या असर है, तहज्जुद के क्या असर है। अगर उनका असर हो रहा है उन इबादात का, तो ये पता चल जाएगा हम हमारे नफ्स कैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। सबसे पहला जो चीज़ नफ्स अम्मारा, इसकी क्या खासियत कुरान ने बताई कि ये नफ्स ऐसा है कि जिस इंसान के अंदर ये नफ्स होता है वो क्या करता है? सू नफ्स अम्मारा, कि उसका काम ये, उस आदमी का काम, इंसान का, उस औरत का काम क्या होता है? हर वक्त वो बुराई को सोचता है, बुराई गुना, एक गुना दूसरा गुना, ये कर लो फलां कर लो, गुनाहों की तरफ तरगीब देता रहेगा। जिस इंसान का अंदर डिजायर ऐसी हो कि उसको हर वक्त गुनाहों का ख्याल जा रहा है, चलो यार ये चीज़ देख लें, चलो यार फलां काम कर लें, चलो ये कर लें, गुनाह गुनाह तो सब समझते हैं ना, गुनाह की डिजायर अंदर आ रही है, तनाई में है तो और मस्त हो गया गुनाह के अंदर, अंदर से उसकी ख्वाहिशात बढ़ रही हैं, ये कर लो यार, देख लो यार, फल लो यार, खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुनाह दावत दे रहा है उसका अंदर गुनाहों का, तो उस वक्त क्या होता है? वो नफ्स अम्मारा के अंदर गिरफ्तार होता है वो शख्स, और सबसे बुरी हालत है। अल्लाह माफ़ करे, इस हालत में इंसान को मौत है। दुनिया की मोहब्बत गालिब होती है, हराम का पता नहीं होता, किसी चीज़ की तमीज़ नहीं होती उसको, दुनिया के अंदर मस्त होता है, बस माल औलाद बीवी बच्चे ये सब गुनाह के काम हो जाते हैं उससे, हर वक्त उसकी यही दावत अंदर चलती रहती है, हर वो चीज़ उसको अल्लाह ने मना किया उसकी तरफ देखेगा, नमाज भी पढ़ के आएगा फिर वही काम करेगा, हज करके आ रहा है फिर भी वही काम करेगा, तबलीग से आ रहा है तब भी फिर वो उसने काम करना है, काम बुराई उसकी रुकती नहीं। ऐसे इंसान को नफ्स क्या, ये क्या है नफ्स? अल्लाह माफ़ फरमाए, पर बड़ी ज़्यादा इंसान पहचान सकता है कि मेरा नफ्स क्या है। अब यहाँ जिक्र से थोड़ी फायदा होगा, फायदा किससे होगा? इससे होगा, इससे होगा, आपको ये हो गया मामला अलहमदिल्ला। अब ये तो नहीं जो हर जिक्र कर रहा है वो जन्नत में जा रहा, नहीं, वो जाकिर जन्नत में जाएगा जो इससे जान छुड़ा लेगा। बोले सुभान अल्लाह, हो जाएगा वो नवाजी जन्नत में जाएगा जो इससे जान छुड़ा लेगा, माना कोई नहीं जाएगा उसे कुछ कर ले। अच्छा, जब इस पर ये सही होता है, थोड़ा आपने मेहनत शुरू की, जिक्र किया, जो तरीका बताएंगे अल्लाह ताला इसका तरीका बताएंगे कैसे चेंज कैसे होते हैं, अल्लाह की फजल से ये नफ्स जब चेंज होकर फिर दूसरे कैटेगरी में आता है वो नफ्स, उसको क्या कहते हैं? नफ्स लवामा। ये कुरान बता रहा है इसकी क्या खासियत है, ये थोड़ा अरूज पे आ जाता है, रेक्टिफाइड हो जाता है। इसमें अब क्या होता है, इसको मलामत आ जाती है, इसमें मलामत रिग्रेशन, क्या गुनाह किया या मुझे नहीं करना चाहिए था, उन्हें सवाल मिला, कोई हरकत कर गया या बहुत बड़ी हरकत हो गई, या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, नमाज छूट गई या बहुत सती हुई तो नमाज मुझे छूटनी चाहिए थी, कोई और हरामकारी कर ली, जो गुनाह कर लिया, पहले तो कुछ नहीं था ना, कुछ फुकर नहीं थी, पहले तो करे जाते, अब क्या आ गया कि उसमें अब रेग्रेशन आ गई थोड़ी, नहीं यार मुझे नेक होना चाहिए, यार देखो यार मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, और फिर क्या उसने तौबा कर ली, ठीक है तौबा की, थोड़ी देर चला फिर गुनाह उसने शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह, फिर गुनाह शुरू किया तो फिर जनाब मेरा फिर उसको पछताना शुरू हो गया। जो इस हालत के अंदर है आदमी, नफ्से लवामों में तो नहीं है, नफ्से अमारा में नहीं है, बल्कि किस में पहुंच गया, नफ्से लवामों में आ गया, बोले सुभान अल्लाह, अब कैटेगरी बढ़ गई इसकी कि अब उसमें रेगुलेशन आ गया है, तो वही कर लेता है, फिर गुनाह हो जाता है तो वही कर लेता है, लेकिन काम तो बना नहीं, अभी मौत का वक्त सही नहीं है उसका, दुनिया की तभी जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, नहीं यार आज से बस मैंने ये करना है, बस मैं ये काम छोड़ दूंगा, नहीं यार मैं ये भी कहता जा रहा है, थोड़े दिन करता है और फिर शुरू हो जाता है, फिर पांच दिन जोर लगाता है, नहीं यार वैसा मैंने जिक्र पक्के करने हैं, मैं जाया करूंगा यार अच्छी महफिल में बैठूंगी, दो तीन या नहीं यार मैं तबलीग में जाऊंगा, चिल्ला लगाऊंगा, सैर रोजा लगाऊंगा, बस एक चिल्ला लगाया सैर रोजा लगाया फिर गायब हो गए, होता नहीं, अब इसको क्या कहते हैं, लफ से पनाह मांगे इस चीज से, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये साथ में जाएगा जहन्नम। अब इस पर मेहनत की उसने, नफ्स हमारा से आया, वो मेहनत जारी है उसकी अल्लाह के फजल से, इस पे भी आ गया, इस पे भी जारी रखी मेहनत उसने, हिम्मत नहीं हारी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर जाके जनाब वो क्या बनता है, नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, समझ गए, मुतमइन्ना क्या होता है, नफ्स मुतमइन्ना बनता है, इसकी क्या खासियत है, ये तो गोल्डन नफ्स हो जाता है इंसान का, गोल्डन सुभान चमकदार रोशन जन्नती, जन्नती इंसान होता है, बिल्कुल जन्नती होता है, अलहमद चलता फिरता जन्नत, जन्नती इस नस वाला, उसकी क्या निशानी है दोस्तों, अल्लाह करे हम सब की वही निशानी हो, उसकी निशानी दोस्तों ये है सुभान अल्लाह, कि खाली नमाजी नहीं होता, खाली हाजी साहब नहीं है, खाली जाकिरी नहीं है, खाली तबलीगी नहीं है, खाली की तलावत कुरान ही नहीं पढ़ते, बल्कि उसमें सिफत क्या पैदा हो जाती है सुभान अल्लाह, कि इन इबादात के साथ उसका जो नफ्स है, डिजायर्स है, जो अंदर है, उसमें क्या ख्वाहिश पैदा होती है सुभान अल्लाह, कि अब उसमें एक ऐसी चीज पैदा हो जाती है कि जो गुना है वो उसको पखाने और पेशाब से भी ज्यादा बुरे लगने लगते हैं, उसकी तबीयत बन जाती है, क्या बन जाती है, नेचर बन जाती है, जैसे हमारे खाने की नेचर है ना, मिसाल के तौर पर अच्छी चीज आएगी तो हम खाएंगे ना, अच्छी खुशबू आएगी तुम सूंघेंगे ना, अच्छी बात होगी तुम खुश होंगे ना, ये नेचर है ना आदमी की, जहर कभी आप बाहर निकले तो अस्तफिलो के किसी कुत्ते का किसी का पखाना आपके रास्ते में पड़ा है, तभी तो खराब होगी नहीं होगी, ये चूहा कोई मरा पड़ा है तो खाने में रहके खराब खाने नहीं खाया जाएगा इंसान से, इसको क्या कहते हैं तबीयत, नेचर इंसान की, जैसे हमें बुराई से, मेरे हजरत फरमाते थे कि जैसे पेशाने से पेशाब से इंसान की बुराई हो जाती है, नफरत हो जाती है, तो ये नफ्स मुतमइन्ना पे पहुंचता है तो वो जो गुनाह है, छोटे से भी गुनाह होगा तो इतना उसको तबीयत गंदी हो जाएगी, मगदर हो जाएगी कि बस पूछो ना उसका हाल खराब हो जाता है, ना ना कहता नहीं यार ये तो क्या हो गया, उल्टी आने लगती है उसको, उल्टी समझते हैं, वॉमिटिंग आने लगती है, वल्लाह झूठ बोल दिया बस लाहौल बिला होते क्या उस तब तबीयत खराब हो जाती है उसकी, कोई भी छोटा सा उससे गुनाह हो गया जबान से निकल गया उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो पहली निशानी ये कि गुनाह उसकी नेचर बन जाती है बचना, गुनाह से नफरत उसकी क्या बन जाती है, तबीयत बन जाती है, यानी ये नहीं कि आप गुनाह समझ के उससे नफरत कर रहे हैं या इसको छोड़, नहीं बल्कि क्या नेचर में उसकी ये बन जाता है, लोग मजबूर भी करें नहीं यार खा ले सूद थोड़ी यार बड़ा काम हो जाएगा इससे तू फिर बाद में दे देना फलां कर देना ये कर लो, अब वो आदमी कह रहा खुदा के वास्ते मैं तो भाई भूखा मर जाऊँ मैंने सूद नहीं लेता, और यार सब चलता है ये वही आदमी जो पहले सूद खुद लोगों को देता था तरगीब देता था अब वो क्या है उसको नाम नहीं सुनना पसंद करता कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह मैं तो भाई ये बनती है नफ्स, एक तो ये इसकी है और दूसरी उसकी तबीयत कैसी बनती है अल्लाह, उसकी तबीयत खुद ब खुद ऐसी हो जाती है कि हर काम जो भी होगा करने का वो शरीयत के मुताबिक करेगा, बोले सवाल उठाएगा नहीं, कहते शरीयत इसकी इजाजत दे रही है नहीं दे रही, बोले सवाल कि यार चलो भाई अब ये है बड़ा कारोबार चलने वाला है अपना, ये है जी फलां जब रिश्ता है जना वो करना है ये है, इस तो दुनिया में कारोबार है ना हमारे सारे, तो हम तो जाओ चलो आंख मार के चलो यार कर लेते हैं देखी जाएगी यार, और चलो यार की फर्क पड़ना चलो कर लेते हैं, ये है ना हमारा स्टाइल भाई, चलो यार बड़ा अच्छा सौदा हो रहा है चलो मार लेते हैं क्या है, चलो यार कौन देख रहा है बाद में यार देखी जाएगी तोबा कर लें, करो करो यार कोई नहीं, बच्चा जी बच्चा इसने क्या डाढ़ी रखनी है जवान है ठीक हो जाएगा, तबीयत में ही चीज है। और जब इंसान नफ्स मुतमन्ना पे पहुंचता है सुभानअल्लाह, वो अपने घर के अंदर किसी गैर नमाजी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहते यार यार ये रहेगा या मैं रहूं, झगड़ा कोई नहीं भाई लेकिन ये तबीयत नहीं बन रही इसके साथ, मैं कैसे इसके साथ बैठूं, मैं इसके साथ खाना कैसे खाऊं, उसकी बीवी का आपने हमने सुने किससे कि बुजुर्ग जो थे किसी कभी भी ऐसी औरत का खाना नहीं खाते थे जो बावजू या बेनमाजी हो, उनको पता लग जाता था कि कहते नहीं हमें भूख नहीं है, अल्लाह दिखाते जिक्र रहमत शेख जिक्र के वाकत बहुत से, वो नहीं कहते नहीं थे, कहते नहीं भाई कुछ दिल नहीं करा हमारा खाने को, उस खाने को छोड़ देते थे क्योंकि वो खाना जिस औरत ने पकाया था वो बेनमाजी थी, बशीरत भी नहीं चलती थी, पर्दा नहीं करती थी, उसमें शऊर नहीं था, नहीं नहीं अब ये तुम बुरा करके आई है जनाब जी, तुम इसने बड़ी नेक औरत है जी, तो जग के जग पानी की पी गई थी आवे जमजम की, वो तो खराब जद्दे का पानी है आज पर ये बोतलें सारी तो वो जनाओ जे फला खा गए तो इतने अजवा खजूर खा के आई इसके तो हाथ की रोटी खा के देखें, अल्लाह वाले समझते थे कि इंसान के अंदर नूर तो ईमान का उसी वक्त है जब शरीयत के मुताबिक जिंदगी हो इंसान की, खाली चेहरे बनाने से हो इमामे पहनने से और सफेद लिबास हो ये ऊंचे झगड़े तो बहुत फिर रहे हैं, हाँ नूर लाए अंदर, नूर ऐसा नूर होता है कि आपको छलकते हैं नूर अत्म नूर, अल्लाह ताला कहता है यही नूर चलेगा रोजे कयामत में, यही ईमान का नूर सामने आएगा, तदब्बरना आत्मिनना नूरना फ़क़फ़िलना, अल्लाह ताला कहता है ना कुरान के अंदर, अल्लाह आज मुकम्मल कर दे इस मेरे ईमान के नूर को जो मैंने वहां कमाया था, देखो भाई कितना अच्छा प्रोग्राम अल्लाह पाक दे रहे हैं, आंखें खोल रहे हम, सामने जनाजा पड़ा हो तो फिर ये सोचा करें कि यार क्या ये इस आयत के मुताबिक जा रहा है भाई मेरा या नहीं जा रहा, ईमान से सोचा करें कि कल मेरी बहन ये गई है जो मेरा भाई जो मेरे गया है ये मेरा बेचारा गया है कोई मुसलमान जा रहा है वहां, ये खड़े को सोचने वाली बातें हैं, अब वो सदीक सोचते थे असलमान सोचते थे खुद नबी या करीम कब्र पर जाके बातें सोचते, हम तो कहते हैं फटाफट दफनाओ इसको छुट्टी करो इसकी सीटिंग कर लो मौला पहला वो बनाओ बस जर्दे पुलाव बनाओ लोगों खिलाओ खत्म शरीफ ये जी लोगों को जमा करो तो ये करो तो फलां करो, इस पर बड़े शौक हैं, मर जाए तो देखो कहाँ कहाँ तक खत्म चलते हैं पाकिस्तान में उसके जगह खत्म हो रहे हैं, ये तो काम से करा ले, दुनिया देखने वाले काम बहुत हैं हमारे पास बहुत है। और ऐसा लिबास जो शख्स पहनता है जिसका नफ्स मुतमईन हकीकत ही है उसके इमामों में जो है रिया होती है, जेब नहीं देता उसको ऐसे इंसान को धोत ये कुर्ता पहने या सफ़ेद लिबास पहने सफ़ेद इमाम पहने सफ़ेद धोती पहने, वो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है एक्चुअली, रिया है वो सारे, ये सोचना चाहिए हम कि जब नबी करीम सलम का कोई लिबास आप पहन रहे हैं इतनी ऊंची चीज पहने तो उस मुकाम पर आप हैं या रिया, क्योंकि उस मुकाम से नीचे करके जो बात करता है वो यकीनन दुनिया के लिए कर रहा है, दुनिया जी बड़े सुन्नत में अमल करने वाले हैं जी क्या पूछते हो, एक मुझे बात है उसने वो बस चादर ओढ़ ली काली सी बेचारे ने तो बस आया हूँ पहुंची मैं उम्र करने का सारे मेरे देखते हो ये सुन्नत पे अमल कर रहा है मदीने में चू देखो जवाब कहाँ से जी माशाल्लाह बड़े सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, वो एक चादर उसने उड़ी थी उसने पता नहीं क्या समझने लगा पाया, तो जिसके दिल में ये ख्याल आ जाए इन चीज़ों क्योंकि बहुत ग्रेट चीज़ है ये आम हो गई यहाँ पर हकीकत में ये एक इलाज है बहुत बड़ा इसका, और ये जाहिर है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपना हम मुहासबा करें इन चीज़ों का, धोती और गण से कुछ नहीं था भाई धोतियाँ पहन ली ये पहन ली नहीं, इस चीज़ का ख्याल करें कि अहल हैं आप इस चीज़ की क्या, लोगों को दिखाने के लिए पहने कि लोग क्या हमें अच्छा समझें हम वो समझें, क्या आपका करेक्टर है आपका अखलाक है मुझे बताए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कल खड़ा हो गया आदमी इस पे तंज करे कि इस शख्स को देखो यार शक्ल सूरत देखो इसने मेरे इतने पैसे देने इसने इतना माल देना मैं ये सब कुछ ले गया, मैंने कल इसको लड़की के साथ देखा है फिरते, मैं इसको फला ये काम करते देखा, ये तो शख्स वो नमाज ही कभी नहीं पढ़ता। फला मानना मानना मेरे भाई ये हकीकत बात है, ये डबल गुना हो जाएगा इससे, उस मुकाम पर लाए अपने आप को करेक्टर के ऊपर कर, याद रखे मना क्या है ये खालिस रिया कर रहा है इंसान, खालिस रिया में डूबा हुआ है, अपने आप को अंदर से कंट्रोल करे। अब तीन नफ्स दिए, तीनों को देखा करें मैं किधर हूं किधर खड़ा हूं, समझ रहे मेरी बात, जो समझ रहे बोले सुभान अल्लाह। कितनी बेहतरीन बात है, अल्लाह ताला कैसे हमें तैयार करते हैं और फिर भी हम जहन्नुम में गए, हलाल इबादत है ये, नबी करीम सुन्नत पे अमल करना, एक सुन्नत पे अमल करना 100 शहीदों का सवाब है, लेकिन हाँ लेकिन एक ऐसे रियाकार का अमल करना 100 जहन्नुम में जाने के बराबर हो जाएगा। दो चीजें, एक रियाकारी से आप अमल कर रहे हैं और एक सुन्नत को आप सुन्नत समझ के जिंदा कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। करेक्टर आपका ये और शक्लें आपने बनाई इस किस्म की और लिबास पहने, जैसे आज के बहुत आशिकाने रसूल नहीं नजर आते आप, अभी बाहर आएगी 12 रबीउल जो आशिकाने नजर आते हैं, आशिकाने जुलूस ये सब कुछ कैसे बनना है, क्या ये रिया है, इसकी कोई हकीकत नहीं हैगी, ये तो पानी की तरह उड़ जाएगी, हमारे हज भी उड़ जाएंगे, अब उमरे पे जा रहे हैं, हम उमरे पे जा रहे हैं, हम उमरे पे जा रहे हैं, एक फर्ज है हज एक, वो अल्लाह कबूल कर ले, याद रखें यकीनन बहुत बड़ी इबादत है, यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह में कोई शक नहीं, अल्लाह बार बार हमें उमरे भेजे, बार बार हमें हज भेजे, लेकिन अपने करेक्टर को डिवेल्प करें, अपने नफ्स जो अल्लाह ने बताया नफ्स अलमारा से निकले, नफ्स लवामा को छोड़ें, नफ्स मुतमैना को सीने से लगाएं, एक एक कदम पे अपने आप को जांच, ये बहुत बड़ी बात है जिंदगी, ऐसे नहीं है बस नमाज पढ़ ली बस हम फारिग हो गए, हमने उम्र के लिए बख्शे गए फला हो गए, ये इन चीजों का काम नहीं चलता है। मैं तो सीधी बात करता हूं भाइयों, मरते दम तक कुरान का हुक्म है कि मरते दम तक अपने आप को चेक करते रहो, तब तक मौत ना आ जाए, रातिकुल यकीन कुरान कहता है, जब तक मौत ना आ जाए खबरदार, सब भी हब्बी हम दे, अल्लाह को याद करते रहो जिक्र करते रहो, ऐसा ना हो धोखा खा जाओ, सुभान अल्लाह। हम तो 4 दिन जिक्र करते हैं तो खिलाफ ना सोचने कर देते, बुलंदी सोचने अच्छे अच्छे रुतबे, 2 दिन कर लें तो तहज्जुद पत्नी अपने आप को कम से बड़ा बुजुर्ग समझ लगते हैं, बात समझ आ गई। तो ये क्या है लफ्ज है मुतमईन, तो हमने इस पर मेहनत करनी, अब सुनना नहीं है सिर्फ, आज से पहले क्या करना है अपना तजिया करना है कि मैं कौन से नफ्स पे खड़ा हूं, सीधी बात है उस शीशे के सामने खड़े हूं कि फिर हायत कि यार ये तो मैं मेरा नफ्स यही कहता है यार ये कर ले, उस औरत के पास चला जाए, ये पिक्चर देख ले, ये कर ले फला, ये अंदर से ये शैतानी चल रही है यार, माल का माल है ये कर ले, धोखा दे दे, इसका माल खा जा, उसका कर जा, उसकी दबा दा, कहते ये तो शगली गधे वाली है शीशे के अंदर, तो इंसान ही नहीं है, चेंज कर अपने आप, थप्पड़ मारे मुंह पे अपने, किस तरह मारना है तूने, तब्दील कर अपने आप, बस फिर उसके बाद तरीका मैं बताऊंगा क्या है इसका, कुरान बता रहा मैं नहीं बता रहा, कुरान ही पढ़ा ना भाई आपके सामने इसी में आयत में, लेकिन अल्लाह वालों के पास बैठे बुजुर्गों को सीखे तो तब समाती है सारी चीजें, बहुत बड़ी तफसीर में बता रहा हूं आपको, जो अल्लाह वाले से मैंने सुनी है मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह वालों से ये तफसीरें सुनते हैं ऐसी, कैसा उन्होंने निखार के दी है बात, आप ये देखें सुभान अल्लाह बोले, इसके सीने से लगाया करें, ये बातें बड़ी कीमती चीज है। तो पहली चीज ये समझा दी अल्लाह ताला ने कि तुम्हारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए और ख्वाहिश साथ उसके बाद ये तैयारी होनी चाहिए और तैयारी ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना भैया। तो सबसे वाला कामयाब कौन सा, नफ्स मुतमिन वाला कामयाब होगा, तो हम बेकार हैं जब तक नफ्स मुतमिन ना ले लें, अब हम अम्मारा से लवामा और लवामा से मुतमिन में कैसे आए, ये है ना उसकी तैयारी कैसे हो, अब कुरान ही बता रहा है, या अय्यु नफ्सिल मुतमइन्ना अर्जी इला रब्बिकि रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। क्या प्यारी बात कही है अल्लाह वालों ने, बुजुर्ग ने मुफसिरीन कैसी बात कही, कहते आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह सुबहाना ताला ने ये मैसेज दिया किस तरीके से, पहले तो सारा प्रोग्राम दे दिया दिया ना, और ये नहीं कहा उसके बाद कि जन्नत में चले जाओ, कहते नहीं इस प्रोग्राम को तैयारी पहले बताई कि तैयारी कैसे करोगे तब जाके तुम्हें जन्नत मिलेगी, वो तैयारी क्या बताई, फतखुली फी इबादी کہ اس سارے نفس کو تبدیل کرنے کی جو تیاری کرنی پڑے گی تجھے کیسے کرے گی؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کہ تُو کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جو نفس میں مطمئن والا ہے. فرصت قائم ہے جی، پاکستان جانا پڑتا ہے جو تو انڈیا جانا پڑتا ہے جی. میں کہتا ہوں اگر ہمیں دوسرے کونے بھی جانا پڑے الحمدللہ کہ اللہ والے کی جوتی اٹھانے کے لیے، تو تب بھی سودا بہت سستا ہے. اور یہ میں نے خود کر کے دیکھا، میں اس ملک سے 3-4 ہزار میل دور جاتا تھا صرف اس نفس کو تبدیل کرنے کے لیے. وہ نہیں ہوا، میں تو آپ سے بہت گندا ہوں، آپ کی جوتیوں کو خاک ہوں، لیکن کوشش کی تھی میں نے کہ بھائی میں بھی اپنے نفس کو ختم کروں. لیکن فلاں جگہ پہ ایک بزرگ بیٹھا ہے، اس جگہ وہ صحیح بزرگ ہے جو نفس کو تبدیل کر دیتا ہے. مجھ جیسا انسان دکان چھوڑتا تھا، گھر چھوڑتا تھا، بچوں کو چھوڑتا تھا، سفر اختیار کرتا تھا، ادھار کبھی نہیں لیتا تھا، اللہ دیتا تھا مجھے پیسے، ٹکٹ کٹاتا تھا، اور یہاں سے سب سفر میرا اس لیے ہوتا تھا. بولے سبحان اللہ، اللہ کا حکم تھا کہ نہیں مل سکتا، یہ نہ مسجد میں ملے گا، کسی جگہ نہیں ملے گا. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، قرآن نے کہا کہ تجھے یہ چیز حاصل کرنے کے لیے تجھے یقیناً کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اور اللہ والا وہ ہوگا جو نفس مطمئنہ کا مالک ہوگا. باقی میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں اپنے حضرت کی ساری رات آپ سے باتیں کر سکتا ہوں، میں اس مصلی میں بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس شخص کے بارے میں کہ ساری زندگی میں اس کے ساتھ رہا ہوں، مکے میں، مدینے میں، بہت خدا کی قسم میں نے اس شخص جیسا نفس میں نے نہیں دیکھا، قسم کھا کے. میں نے اتنی ساری زندگی گزاری، میں نے ایک دفعہ حضرت صاحب کی زبان سے میں کہتے نہیں سنا. کیا انسان تھا یہ، مجھے سمجھ نہیں آتا. اور جو انسان اس کے سامنے آیا، بڑے سے بڑا گناہگار بھی انسان آیا، اللہ کی فضل سے بس بیٹھا ہے، وہ نہ تقید کرتے تھے، نہ کوئی واضح کرتے تھے، نہ کوئی مسئلہ بتاتے تھے، نہ کچھ کرتے تھے. حالانکہ بڑا عالم، کتنے بڑا عالم تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، حضرت رشید گنگوگی کے ساتھ ان کی مطلب صحبت تھی، حضرت شیخ الحدیث اور وہ ساتھ ہم درس تھے، ساتھ پڑھا انہوں نے شیخ الحدیث سہارنپور میں، میں اپنے حضرت کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب ان سے پوچھا سر اس مسئلہ کیا، کہتے ہیں میں تو جاہل ہوں، عالم سے پوچھے. میں آپ کو میں نے ایسا عاجز انسان دیکھا ہی نہیں یار، کہیں تو شو مارتا ہے آدمی، کبھی تو شو مارتا ہی ہے انسان، کسی بات میں اکڑتا ہے. تو یہ کون تھے، نفس مطمئنہ والے. تو جو کوئی گناہ سے گناہ گران لوامہ والا جاتا تھا، امارہ والا جاتا تھا، الحمدللہ نیت صحیح ہو تو نفس مطمئنہ لے کے نکلتا تھا. محنت تو کرنی پڑتی ہے. اب ہم تو کہتے ہیں بس مسجد میں بیٹھ جائیں، الفلاح میں بس یہ ذکر ہوتا رہے جی، بس وہ بھی ثواب کمائیں گے کمائیں. یہ کوئی زندگی ہے یار، کیوں پاگل بنے ہو؟ اتنی سستی ہوتی جنت، جو بلال تھے نا کبھی آگوں میں نہ جاتے، سینوں کے باپ پتھر نہ لیتے، ریتوں پہ اپنے جسم کے داغ نہ دکھاتے، ہر باپ پھانسیوں پہ نہ چڑھتے، اپنے جسموں کے ٹکڑے نہ کراتے. بشن صحابی سے جن کے سارے جسم کے ٹکڑے ہو گئے حد پر، اور خواہش کیا ہو رہی ہے کہ سب خواہش یہ ہے کہ جا کے نبی ہم اطلاع دے دیں کہ آپ کا ایک عاشق جو اس حال کے اندر ہے، اور کچھ نہیں بس کہنا میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرما دینا. اور کیا دعا کی اللہ کے نبی نے اس کی. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، تو ان کی نمازیں تو اچھی تھیں، ختم بس، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ مسجد میں نہیں. یہ بتا کے گئے کہ دوستو یہ آنے والی زندگی جو ہے جس کے بارے میں ہم نے جانا ہے، ارجی ربی کا، یہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ اتنا اونچا پیغام ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا. موت بہت بڑی چیز ہے، موت آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی، دس جاتی ہیں آنکھیں، گال اندر چلے جاتے ہیں، پگلی پنڈلی چڑھ جاتی ہیں، جس طرح قرآن کے اندر ساک جس کو کہے پنڈی پہ پنڈی کھینچ جاتی انسان کی، سب نکل جاتے ہیں نخرے انسان کی. یہ موت ہے. کتنا خوش قسم انسان ہوگا سبحان اللہ جس نے زندگی بھر اس عورت مرد نے نفس مطمئنہ کی کوشش کی ہو. نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کے جو محور مرکز سینٹر پوائنٹ کیا ہوگا، کہ ہر زندگی کی چیز اس کے شریعت کے مطابق ہو، گھر و بار، بیوی بچے سب دیکھے گا کس نے کہا کہ شریعت کتنا اس کو اجازت دیتی ہے یہ کام کرتا ہے. گھر میں بے نمازی ہوگا، گھر میں فراد ہوگا، گھر میں بے پردگی ہوگی، وہ اس گھر کے اندر اس کے لیے دل نہیں لگے گا، اس کے الٹی آئیں گی یار تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ پھر ایسے لوگ جو راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، کرم کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کے گھروں کو بھی صحیح فرما دیتے ہیں. لیکن وہ تھوڑے ہمارے تھوڑے سے امتحان آتے ہیں، ہم پھر انہیں کے ساتھ مل جاتے ہیں، چلو یار کی کریے ہم تو. अब अस्सी तो पढ़ देना नमाज में, पुत्र नहीं पढ़ता तो क्या फर्क पड़ता है यार, पढ़ लेगा यार, चलो अस्सी तो पढ़ने पे ना, खबरदार ये तबीयत नहीं है तो वो बिल्कुल नफ्से अमार है अभी तक। मेरी बातें समझ आ रही है दोस्तों? नहीं आ रही? जिसको आ रही सुबह लग गए तो आज से तैयारी है फिर, ये सब मुतमिन वाले बैठे हैं, तैयारी है अपना ढांचा देखें। और फिर कहां से मिलेगी मुतमिन, कैसे मिलनी है, कौन सी इबादत उसके लिए मुझे बोले, कौन सी है? अल्लाह वाली की सोहबत में फद खुली इबादी कहने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं वद खुली जन्नती, सुभान अल्लाह, उसने तुझे सर्टिफिकेट दिया ना मुतमिन ना नफ्स का, सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर, खुदा की किस्म अल्लाह वाले देते हैं कि जब वो शख्स जवान से निकल गया किसका नफ्स मुतमिन है, उसने सर्टिफिकेट उसे नहीं दिया बल्कि रब ने दे दिया तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट। झुंडो मिलते हैं अल्लाह वाले ऐसे, नजर हो तो अल्लाह ताला वहीं पहुंचा देते हैं, लेकिन हम कदर नहीं करते, हमने कदर ही नहीं किसी चीज की, अपने अकड़े में बैठे हैं बस, हम तो जी देखी जाएगी जो कुछ होगा। अल्लाह वालों की कदर करो, उनसे वो चीजें हासिल करो जो करने की, बकवास फजूल हरकत मत करो, बंदर मत बनो, खाम कर लिबास में कुछ नहीं रखा, मैं आपको बता इन चीजों में कुछ नहीं, इससे मुतमन्ना अपने नफ्स को बनाओ, रेस्टलेस हो जाओ, आराम ना है जिंदगी के अंदर जब तक हम इस मंजिल को हासिल ना करें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला सबसे बड़ा मरीज तो मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी नफ्स मुतमिन अता फरमाए। जब इस दुनिया से जा रहे हो ऐसी जा रहे हो रादियत मर्दिया नारे पढ़ रहे हो फरिश्तों के, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तो मजा है, इर्जे रब्बी करा दे माफ। समझ आ गई भाई? कितनी दफा आपने आयत पढ़ी होगी, माशाल्लाह हाफिज भी हैं कारी भी हैं, समझ मफहूम आज ही आया है कि इस तरह हमें जाना चाहिए इसी जिंदगी, इसलिए इमाम बांधते हैं, इसलिए हम दाढ़ी पहनते हैं, सुनत पे अमल जरूर करें, लेकिन नफ्स को जरा टटोल के रिया ना बन रही हो, अच्छा रिया ना बने, कोई मलासा ना हो, हज करो, ज़कात करो, तहज्जुद पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहे करो, दिए नफिल पढ़ो, लेकिन नफ्सों को देखो कि इस नफ्स के साथ ही आप इबादत कर रहे हैं, सबसे पहले अंदर अपने आप को देखा दे। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।